أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله العظيم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا رب او میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے گنہگاروں کو مجرمین کو دشمن بنایا ہے. وکفا بربک ہادیا ونصیرا، اور کافی ہے تمہارا رب تمہیں ہدایت دینے والا، تمہارا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے پڑھی. وقال الرسول یا ربی، اللہ مجھے صحیح سچی بات سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں لفظ قوم ہے. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی قوم کی شکایت کریں گے. اب قوم سے کون مراد ہے؟ ان قومی، قوم، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دو تفسیر ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے قریش لوگ، ہاشمی لوگ، مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ لوگ مراد ہے کہ ان کے سامنے میں قرآن پڑھتا تھا، سمجھاتا تھا، لیکن وہ قرآن کا انکار کرتے تھے. زیادہ تر بڑے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے. اللہ کے نبی شکایت کریں گے، کیس اور مقدمہ لے کر جائیں گے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، کہ میری امت نے قرآن کو، اس لیے کہ یہاں لفظ مہجورہ ہے. مہجورہ کے دو میننگ ہے. مہجورہ کا ایک میننگ ہے چھوڑ دینا، ترک قرآن، قرآن کو چھوڑ دینا، اور مہجورہ کا ایک میننگ حجرن، حجرن سے ہے، اس کا معنی بکواس، وقت ضائع سمجھنا. کہ میری قوم کہتی تھی یہ قرآن کریم بکواس ہے، وہ ترجمہ. ایک تو آپ چھوڑ دینا. مفسرین یہ کہتے ہیں جب کافر مکہ کے، ان کا قرآن پر ایمان نہیں تھا، تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں دنیا میں مسلمان قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ان کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سمجھ کر بھی قرآن کریم کو پڑھتے نہیں تھے اور اس کو سمجھتے نہیں تھے. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک و حجت علیک، قرآن تیرے خلاف حجت کرے گا یا تیرے فیور میں ہوگا. فیور میں ہوگا تو کامیاب ہوگا، اور اگر تیرے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر ناکام ہی ناکام ہے. اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ، कुरान और फास्टिंग कयामत में सिफारिश करेंगे। बोथ ऑफ देम गोइंग टू मेक इंटरसेशन। वो ले जाएंगे अल्लाह के पास सिफारिश को, अल्लाह माफ कर देंगे, या तो फेवर करेंगे या तो दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन बन गए तो कुरान की गवाही तो जरूर कबूल होने वाली है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअलिल कुरान हुज्जतुन अलैना वजअलहु हुज्जतुन लना। ए अल्लाह, इस कुरान को हमारे खिलाफ न बनाना बल्कि हमारे मुआफिक बनाना। कहां है लोगों के पास टाइम, दुनिया की किताब पढ़ने का टाइम है, फोन और दुनिया के जितने भी किस्से कहानियां साथियों जितने भी, उसका तो टाइम है लेकिन कुरान करीम पढ़ने का टाइम नहीं है। कुरान करीम पढ़ने का टाइम नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को कुछ सिखाए, सीखे और सिखाए। हमारे तबलीग जमात में जाते हैं, सिखाते हैं 10 सूरते सीख लो, सिखाए कुछ ना कुछ सिखा दे, वो पढ़ेंगे नमाजों में आपको सबब शुरू हो जाएगा। हजरत सुलमी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब से मैंने बुखारी की यह हदीस हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की सुनी, तब से लेकर इस हदीस ने मुझे कुरान के सीखने सिखाने पर मजबूर किया और मैं बैठकर मस्जिद नबवी में 30 साल तक मुसलसल कुरान सिखाता रहा। 30 साल तक कुरान सिखाता रहा 30 साल। अबू बकर इब्न अय्याश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो कहा भाई इनकी बहन जो करीब रहती उनको बुला लो, है तो कोई नहीं, उनका अकेले है घर में, तो उनकी बहन को बुलाया गया, करीब मोहल्ले में रहती थी, वो आ गई और बिल्कुल इंतकाल का वक्त करीब था तो बहन रोने लगी, बहन क्या रोने लगी और कहने लगी, तुम दुनिया से जा रहे हैं। तो उबकर याश ने कहा, तुम क्यों रोती हो? कहा, तुम छोड़कर जा रहे हैं दुनिया से। फरमाया, न रो, इस घर में तेरे भाई ने 12,000 टाइम कुरान को पूरा किया है, मेरे पर न रो, अपने पर रो, मुझ पर न रो, अपने पर रो, मैंने तो आखिरत बना ली है। और इमाम इब्ने तैमिया की बात तो मैंने पहले भी सुनाई थी आपको, जुमा में कालीबंद सुनाई होगी, कभी सुनाई होगी। इमाम इब्ने तैमिया को बादशाह ने पकड़ कर जेल में डाला, भाई के साथ डाल दिया, भाई के साथ में खिदमत कर रहे थे, तो भाई ने खुद लिखा है कि एक साल में कंफर्टेबल जोन नहीं था जेल में, उस जमाने की जेल तो कैसी होगी, अब तो कंफर्टेबल जोन है, चलो आदमी खाता पीता खेलता और कुछ सीख लेता है, उसमें मदरसा भी मस्जिद भी सब कुछ होती है, दुनिया भी सीख लेता है सब कुछ, लेकिन उस जमाने में तो सेलर जैसी जेल होती थी, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं, और कोई किताब भी नहीं इजाजत दी तो सीने की, तो बादशाह को कहा, सारी किताब तू मेरी छीन सकता है लेकिन मेरे दिल में जो कुरान है वो नहीं छीन सकता है, वो तो मेरे दिल में रहेगी। और फिर भाई लिखते हैं कि मेरे भाई के पास कुछ नहीं था, कुरान था दी सीने में, वो रोजाना पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, साल में 40 कुरान खत्म करते थे, साल में 40 कुरान, जबकि ऐसी 70-80 साल की उम्र है, बीमार है, चल नहीं सकते थे, जेल में उन्होंने क्योंकि बादशाह के खिलाफ कोई फतवा दे दिया तो पसंद नहीं आया उसको, फिर दूसरे साल फिर 40 कुरान खत्म किए, 2 साल में 80 कुरान खत्म किया, और तीसरा साल शुरू हुआ तो उस वक्त कुरान शुरू किया और 27 पारे में 28 पार सूरतुल कमर में पहुंचे, जब सूरह कमर की एंड कर रहे थे और पढ़ रहे थे, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جنت کا ذکر کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی, قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی روح نکل گئی. جیل میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں میں. ہاں اسی لیے یہ بات یاد رکھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید بیان کیا بخاری شریف میں, 58 چیپٹر اس میں نقل کیا ہے, 58 چیپٹر. اس 58 چیپٹر میں غالباً 32 چیپٹر اللہ کی صفات کے بارے میں بیان کیا ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں معتزلہ, جہمیہ, کرامیہ یہ سب فرقے تھے جو اللہ کی صفت کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ خالق نہیں, اللہ رحمان نہیں, اللہ رحیم نہیں, اللہ رزاق نہیں. اس پر انہوں نے کتنے چیپٹر لکھے, 32 چیپٹر لکھے, اور نام بھی رکھا کتاب الرد علی الجہمیہ و معتزلہ و توحید. توحید کیا ہے؟ اور اس 58 میں سے 32 کو کم کر دیں, بقیہ 20 چیپٹر قرآن کی تعریف میں کہ قرآن کی محبت میں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے اس پر لکھا ہوں. اور آخری حدیث میں سمجھا دیا کیسے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, حبیبتان اور خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی تین صفات بیان فرمائی کہ جو آدمی یہ ذکر کرے اس کی تین صفت ہے, حبیب بنے گا, کلام خفیف ہلکا ہوگا, نبی کا کلام کیا ہوگا, ہلکا ہوگا, اور وزن میں بھاری ہوگا تو حبیب ہوگا, خفیف ہوگا, ثقیل ہوگا. جب نبی کے کلام میں یہ بات ہے تو اللہ کے کلام کیسا ہوگا, وہ تو احب ہوگا, وہ تو اخف ہوگا, اثقل ہوگا. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا کلام کتنا ثقیل ہوگا, جو پڑھے گا تو وزن میں کتنا ہیوی ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آدمی حدیث سمجھے نا اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں, کہ اللہ کا کلام اتنا زیادہ وزنی ہوگا قیامت میں, جو آدمی پڑھے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. ڈاکٹر عبد الرحمن کی کتاب ہے سور من حیات الصحابہ, اس میں لکھا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کا انتقال ہو گیا تو عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا بہت گرینری ہے, بہت زیادہ گارڈنز ہے, اور وہاں ایک بہت بڑا کاسل اور بنگلہ ہے, اور ایک آدمی اس میں سے دروازہ کھول کے نکلا. میں دیکھتا رہا خواب میں, یہ کون ہے, یہ کون ہے. دیکھو خواب یاد رکھو, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, لہم البشرا سورہ یونس میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا. یہ بشرا کی تفسیر کیا ہے؟ ابو الدرداء فرماتے ہیں, یہ امام بغوی نے اپنی تفسیر تفسیر معالم التنزیل میں اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ بشرا سے مراد, حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ مصر کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے پوچھا بشرا کا کیا مطلب ہے, تو میں نے اس کو کہا رؤیا لک و رؤیا علیک, تو خود خواب دیکھے اچھا یا تیرے بارے میں کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے. یہ بشرا ہے. خواب حجت شرعی نہیں ہے, لیکن خواب بشارت जरूर है। तो अबू दर्दा फरमाते हैं कि मैंने यही तफसीर पूछी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बुशरा का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू दर्दा मुझे पता था तेरे सिवा मुझे ये कोई सवाल करने वाला नहीं था। सुन ले उसका मतलब अच्छे ख्वाब है, अच्छे ख्वाब है। तो अब्दुल रहमान तो आप बिन मालिक फरमाते उस मकान में से एक आदमी निकला, जैसे जैसे मेरे करीब होता गया तो मैंने उसको देख लिया, भाई ये कौन है? अब्दुल रहमान है। तो रहमान इतना बड़ा मकान तुम्हें मिल गया? फरमाया हादा आतानी अल्लाह बेतिलावतिल कुरान, ये मकान अल्लाह ने मुझे दिया कुरान की तिलावत की वजह से। यकीन जन्नत में बहुत बड़ा दर्जा होगा। अबू मंसूर खयात के बारे में शेख अब्दुल फताह अबू गुद्दा फरमाते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि अबू मंसूर खयात का मदरसा था, वकान मदरसतुन, उनके यहां नाबीना बच्चों का मदरसा था, ब्लाइंड बच्चों का मदरसा था। उस जमाने में ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, आजकल तो ब्रेल कुरान है, उस जमाने में बहुत मुश्किल था। चंदा करते थे, बच्चों को खिलाते पिलाते मदरसा चलाते थे। फरमाया मेरे हाथ पर हाफिज सबउन सिबियान अल उमियान, मेरे हाथ पर 70 नाबीना बच्चे हाफिज कुरान बने। कितने भाई? 70 हाफिज कुरान, वो भी ब्लाइंड बच्चे नाबीना बने। जब इनकी मौत का वक्त आ गया हाफिज साहब, जब उनकी मौत हुई तो उनके ईशा के बाद उनको दफन किया गया, कफन दफन ईशा के बाद हो गया। उस रात में उनके एक बहुत बड़े शागिर्द ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत उस्ताद क्या गुजरी है? क्या कहा? गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मेरी मगफिरत कर दी। क्यों? ले तालीम कुरान असिबियान उम्यान सूरत अल-फातिहा, मैंने बच्चों को सूरत फातिहा सिखाई थी, उस पर अल्लाह ने कहा उसी पर तेरी मगफिरत है। हाफिज कुरान तो बात की बात है, सिर्फ किसी बच्चे किसी को क्या है सूरत फातिहा सिखा दी, ये बहुत बड़ा काम है जो छोटी छोटी सूरत किसी को सिखा दी। समझ आ रही बात? बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई आदमी इस तरह, इसलिए पहले जमाने में हल्के लगते थे साहबे किराम के कुरान सीखने के, अब कहां टाइम है लोगों के पास, कौन सीखता है? ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे लोग जमात में जाते हैं तो कुछ हल्के लग जाते हैं कि भाई उसमें हम सूरतें सीखेंगे सिखाएंगे, एक दूसरे को तजवीद सिखाएंगे ताकि ये सूरतें नमाज में पढ़ सके। लेकिन जनरली आप हरमैन में चले जाओ जोहर से लेकर मगरिब तक, वहां हल्के लगते हैं कुरान के, छोटे से लेकर बड़े तक। बल्कि अब तो उन्होंने ये कर दिया, हर जगह उस्तादों को बिठा दिया कि ये जो उमरा के लिए और हज के लोग दूर दूर से आते हैं इनको भी बिठाओ और उनको भी कुछ सूरतें सुनो सीखो सिखाओ, और उनको भी तनख्वाह दी जाती है, उन उस्तादों को भी जो बड़े बूढ़ों को भी सिखाते हैं। आपने देख लेना वहां पर वैसे बूढ़े लोग बैठे हुए होते हैं वो कुरान सीखते। कभी कभी इस हदीस पर अमल कर लेना चाहिए कि सहाबा किराम का हल्का लगता था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान सीखते सिखाते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अनु अब मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अनु के पास गए और कहने लगे मुझे कुरान सुनाओ, मुझे कुछ कुरान सुनाओ। तो हजरत अबू मूसा शरीफ फरमाते मैं क्या सुनाऊ? फरमाया जहां से वो सुनाओ। जब कुरान सुनाना शुरू किया तो हजरत उमर रोने लगे रोने लगे रोने लगे। ये हल्के लगने चाहिए और ये होना चाहिए। इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उन हल्कों में मैंने शुरू शुरू में इस्लाम लाने वाले अब्दुल्ला मसूद है, फरमाया मैंने 70 सूरत कुरान की डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। किससे सीखी है भाई? 70 सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किस तरह से सीखी है पता है? 10 आयत सीखते थे फिर उसको समझते थे। कहां है समझने वाले? कुरान पढ़ने का भी टाइम नहीं, कुरान समझने का भी। तो अल्लाह के नबी भी शिकायत तो करेंगे ना कि लोगों ने اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، کہ یہ وقت ضائع ہے، دنیا کے بڑے بڑے مشغلوں میں ٹائم دیں گے لیکن قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھاگیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی کی شکایت جب اللہ کے نبی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا 70 صورتیں میں نے سیکھ لی ہے، کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، انہوں نے کوئی فتویٰ دے دیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن کا درس دیا کرتے تھے مسجد میں، تو کسی نے بتلایا حضرت زید بن ثابت نے تو ایسا فتویٰ دیا ہے، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں یہ قرآن سیکھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت زید بن ثابت تو بچے تھے، ابھی مٹی کے کھلونے سے کھیل رہے تھے. اور کیا فرماتے اس کے بعد؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سب سے زیادہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا اور سمجھا ہے. اگر کتنے مسروق فرماتے ہیں تابعی، 300 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات بیان فرمائی، اگر مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں خود اس کے پاس چل کر جاؤں گا اور سیکھوں گا، اور اگر چل نہیں سکتا تو گھٹنے کے بل جا کر سیکھوں گا. لیکن کوئی نہیں تھا، 300 صحابہ میں سب چپ تھے، خاموش تھے، سب کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود قاری قرآن بھی ہے اور بہت بڑے مفسر بھی تھے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے تھے. یہ قرآن سے محبت تھی، دوران درس یہ بات بیان فرمائی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر آؤ میرے پاس اور مجھ سے قرآن سیکھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. مجھے پتا ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کس جگہ میں نازل ہوئی اور کیا تفسیر ہے اس کی، میں تم کو کھول کھول کر اس کو بیان کروں گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام لوگوں کو بلاتے تھے، سمجھتے تھے. پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، پوچھتے تھے، سمجھتے تھے، کہا کس کے پاس ٹائم. قرآن کی مجلس سب سے بڑی مجلس ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مسئلے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، اس کو تلاش کرنے کے لیے میں نے، امام رازی اس کو لکھ رہے ہیں تفسیر کبیر میں، میں نے پورے قرآن کو 300 ٹائم پڑھا، 300 ٹائم، تب جا کر مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی. ایسے بھی لوگ تھے جو قرآن کریم کو پڑھتے تھے پڑھتے تھے. اورنگزیب کا نام سنایا، اپنے ہاتھ سے، اب تو علم تو معاش دنیا بن گیا، لوگ علم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ کچھ پڑھائیں گے، پیسے بنائیں گے، کچھ کمائیں گے، علم دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں علم سیکھتے تھے اللہ کے لیے. میں کبھی تم کو سکھاؤں گا، بتاؤں گا دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کی یہ بنا کیسے، کیسے بنا، ایک لمبی تاریخ انشاءاللہ کبھی سمجھاؤں گا. ہر چیز کے لیے پھر ٹائم چاہیے نا، پھر میں بہت اندر چلا جاؤں گا میں کہ یہ کیسے محمود الحسن بنا، محمود الحسن شیخ الہند کیسے بنا، کس کے ہاتھ پر بنا، کون پہلا استاد تھا، کون پہلے، تو کچھ مدرسہ تو سارے ختم کر دیے تھے انگریز نے، پھر کیسے بنا، اور اس پر کس کا ہاتھ ہے اور کس کا چندہ زیادہ ہے، کس کا چندہ زیادہ ہے دارالعلوم دیوبند کو بنانے میں، اور کہاں سے شروع ہوا، کس جگہ سے شروع ہوا، اور پھر اس کی ہوا کہاں کہاں پہنچی ہے، ایک داستان ہے، داستان ہے اس کی، سمجھنے جیسی ہے. اللہ پاک نے اس کے اندر اتنا اخلاص رکھا تھا، ایک استاد ایک شاگرد میں اور ایک چندہ کرنے والے میں، کہاں سے اس کو لائے، دیوبند کے تھے کہیں اور پڑھاتے، اس کو لائے پھر پڑھانا شروع کیا. او کیا اخلاص رکھا تھا، ایک درخت کے نیچے پڑھانا شروع کیا اور ساری دنیا میں اس کا علم پہنچ گیا، ایک داستان ہے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، اس لیے تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نا، ہندوستان میں 800 سال اسلامک حکومت رہی لیکن मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी फारसी जुबान बोलता था। हिंदू में उस वक्त क्या थी जुबान? फारसी, फारसी जुबान बोलते थे। लेकिन बहुत बहुत तीन या चार या पांच तर्जुमा कुरान का फारसी में किया गया, किसी ने कुरान का तर्जुमा तक फारसी में नहीं किया। शबरीला साहब शिकायत कर रहे हैं कि हिंदुओं को दावत देते तो हिंदू सब मुसलमान हो जाते। उसके बाद 400 साल अंग्रेज ने हुकूमत की, किसी ने कुरान का तर्जुमा अरबिक से इंग्लिश में नहीं किया। अगर किया है तो भी एक अंग्रेज ने तर्जुमा किया है। कुरान का तर्जुमा किसने किया है? अंग्रेज ने किया सबसे पहले, तुम्हें पता है। इस कुरान का तर्जुमा इंग्लिश में सब, हां उर्दू से इंग्लिश में क्या उसका अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली अरबिक से इंग्लिश में करने वाला एक गोरा अंग्रेज है, और उसने कहा यह इस्लाम की मजहबी किताब है। कोई तालीम देने वाला नहीं था। फिर उसके बाद शबरीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद उन्होंने तर्जुमा फारसी में, फिर उनके बेटे ने, फिर कहां से कहां चला गया। ये बात किताब तौहीद में शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह लिखी है। बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जुमा किया, लेकिन बहुत सारी जगह पर गलती की है, बहुत ज्यादा। सर सैयद अहमद खान के बारे में भी लिखा है, उन्होंने भी कुरान का तर्जुमा किया, तो उन्होंने भी बहुत गलती की है, लेकिन मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। हजरत फरमाते इसलिए कि ये सैयद थे। क्या थे? सैयद थे। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी, कौन भाई? फजलुर रहमान साहब गंज मुरादा, ये हमारे सिलसिले के शेख होते हैं, समझ में आई बात। इनको कश्फ हुआ जिस वक्त दफन किया गया, सर सैयद अहमद खान को दफन किया गया। ये बात शेख यूनुस साहब अपनी किताब बुखारी की शरह में लिखते हैं, किताब तौहीद में एक जगह पर। जब उनको दफन किया तो कश्फ हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब, कश्फ पर बहुत सारे हमारे अकाबरीन की किताबें हैं। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है मुकाशफात, कश्फ ही कश्फ है। उसमें लिखा है कि मैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था और मेरी आंखें में मुराकबा कर रहा था, मैंने देखा अल्लाह की तरफ से रहमत उतर रही है। क्या उतर रही है? रहमत उतर रही है, सकीनत उतर रही है, रहमत उतर रही है। कहां जा रही है? डायरेक्ट सीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वहां से निकलकर दुनिया में जहां जहां लोग कुरान और हदीस के उलूम को सीखने सिखाने में मशगूल है उनके सीनों में जा रही है। ये अपने मुकाशफात में लिखा है। शबरीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातें तो बहुत अजीब है, हज्जतुल्लाह बालिगा पढ़ो उनकी। तो यहां पर सर सैयद के बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं, मुझे कश्फ हुआ जब उनकी कब्र बंद करके लोग दफन करके जा रहे थे, अल्लाह ने पूछा क्या लाया, क्या लेकर आया? तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं लाया, एक काम लेकर आया हूं, एक काम करके आया हूं। का क्या काम किया? अल्लाह तो सब जानते। तो कहा मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोली है, इन्होंने खोली थी ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ने खोली थी। फरमाया मुसलमान नौजवान लोगों के लिए यूनिवर्सिटी खोली ताकि ये तालीम दुनियावी हासिल करके लोगों से भीख ना मांगे, जकात हराम का खाना ना खाए, हलाल कमाई हासिल करे। तो उन लोगों के लिए मैंने दुनिया की एक स्कूल खोल दी है ताकि नौजवान हलाल रोजी कमाए। फरमाया उसी पर अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी, उसी पर। वहां शेख फरमाते हैं जब एक आदमी एक स्कूल दुनिया वालों के लिए, नौजवानों के लिए, हलाल रोजी के लिए खोलता है, उस पर उसकी मगफिरत हो जाती है, तो जो कुरान और हदीस के लिए मदरसा खोलता है, पढ़ता पढ़ाता है, उसका क्या दर्जा होगा? बात समझ आ रही है? इसीलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह की बात सुना रहा था आपको, चार कुरान लिखे अपने हाथ से उन्होंने, पूरा कुरान लिखा। और बादशाह है, औरंगजेब का तो नाम सुना है, बादशाह है, लेकिन कुरान से कितना उनका शौक है। उस जमाने के लोगों को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। अब तो कौन कुरान छूटा है, इसके पास टाइम है, मिल गया मिल गया, कभी पढ़ लिया पढ़ लिया, कुरान को चार कुरान को लिखा, फरमा एक कुरान मैंने मक्का मुकर्रमा हरम में भेजा और एक कुरान मैंने मदीना के हरम में भेजा और एक मैंने अपने पास रखा और एक कुरान मैंने अपने खास दोस्त को दिया कि इसको पढ़ो। कुरान से मोहब्बत थी, बात समझ आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत में शिकायत करेंगे, वकाल रसूल या रब, ए मेरे रब, इन कौमी हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान पकड़ना भी छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा, अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा। वकदालिक, अल्लाह क्या करे, कदालिक मेरे नबी, इसी तरह हमने पिछली कौमों के लिए भी दुश्मन पैदा किए, मालूम होता है दीन के काम करने वालों को दुश्मनों का मुकाबला नहीं, दुश्मनों के मुकाबला करते हुए अपने दीन का काम करते रहना चाहिए। जो भी दावत और तबलीग में लगता है उस पर इल्जाम और अक्यूज आएगा, उस पर लोग क्या और क्या बुराई करेंगे, लेकिन हमारा काम उस काम को क्या करना है, करते रहना है। अल्लाह यही कह रहे हैं ना, वह कबा बेरबी कहा दिया, कुरान की एक आयत जब मैं पढ़ता हूं ना तो मुझे मेरे तो बदन हिल, कौन सी आयत पता है, फसबिर, क्या कहा, फसबिर फइन्नका बिअयुनिना, फइन्नका बिअयुनिना, मेरे नबी इन लोगों की तकलीफों पर सब्र कीजिए, तुम मेरी आंखों के सामने हो। जब यह आयत उतरी ना तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया, अल्लाह के नबी आपका दर्जा कितना बड़ा है कि अल्लाह खुद कह रहा है तुम मेरे आंखों के सामने हो, मेरे सामने, जैसे मैं अशफाक मेरे सामने बैठे हैं ना, ये मेरी आंखों के सामने, अल्लाह करो, अल्लाह की आंख, अल्लाह देख रहा है, सब्र करो। हमारे अकाबिरीन इतनी आयत को लिख कर अपने जेब में रखते थे, फसबिर فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, जब कभी कोई परेशानी आती थी तो उस आयत को पढ़ते रहते थे, सबर कर, तू अल्लाह के सामने है। दीन के काम करने वाले तुम पर परेशानी आएगी, इल्जामात आएंगे, लोग बुराई करेंगे, इसलिए कि शैतान जहां कहीं भी कोई दीन का काम करने वाला होगा उसको छोड़ने वाला नहीं है, बीमार कर देगा या उसके खिलाफ प्रोपेगंडे करवाएगा, कुछ न कुछ उसके लिए मसले सामने आएंगे। उन मसलों को सामने रख कर कुरान करीम की दावत और तबलीग का काम करते रहना चाहिए। कदालिक, इसी तरह जालना लिकुल्ली नबीन अदुवम मिनल मुजरिमीना, ये मुजरिमीन हमने हर नबी के लिए बनाए हैं, ये तकवीनी चीज है। अल्लाह तबारक व ताला दुश्मन बनाते हैं हर नबी के लिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, सब्र करो। क्या कहा, अल्लाह के नबी को परेशानी होती रहती थी, काश के लोग इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह के नबी को अल्लाह क्या फरमा रहे, वह कफा बे रब्बी कहा दिया, तुम्हें हिदायत देनी नहीं है, तुम्हारा काम है मेरे पैगाम को पहुंचा दो। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, हिदायत देने वाली तेरी रब है, वो काफी है, वो नसीरा, और जब कभी तुम पर परेशानी आए तो तुम्हारी मदद करने वाले अल्लाह बैठे हैं। इसीलिए क्या फरमाया, फसबिर فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, सबर कर, सबर कर, तुम मेरी आंखों के सामने हो, मेरी आंखों के सामने हो। ये हमारे अकाबिरीन लिखते थे, अपने पास रखते थे इस आयत को, फसबिर فَإِنَّكَ, जब भी परेशानी आती इस आयत को पढ़ते रहते थे। قال الذين كفروا لولا نزل, ये सवाल क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर, ए अल्लाह पूरी तौरात एक बार उतार दी, बाइबल एक बार उतार दी, कुरान को एक बार क्यों नहीं उतारता, क्यों 23 साल लगे, अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा, क्यों नाजिल नहीं किया, बेशुमार इसके अंदर में हिकमतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी हिकमत एक तो यह है कि अभी यह हुक्म आ गया, बाद में अल्लाह बदल देगा, बाद में दूसरा हुक्म उतरेगा, जैसे बहुत सारी जगह पर हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अल्लाह खुद कह रहे हैं, कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत और साबित कदम देखना चाहते हैं। क्यों? कुरान करीम जब उतरता है तो कैसा होता था, वो बुखारी शरीफ में, किताब तौहीद में, बाब बदील वही में एक लंबी हदीस इमाम बुखारी ले आए। क्या वही है? अल्लाह बात खत्म करने जा रहा हूं, क्या बात है? इमाम बुखारी फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 40 दिन के लिए, कभी 30 दिन के लिए, कभी हफ्ते के लिए गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे, खाना खत्म हो जाता फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, और वहां कभी रात में कभी दिन में बैठ कर अल्लाह की इबादत किया करते थे, खलवत इख्तियार कर ली। और उसके बाद ये उनके दादा भी ये काम करते थे। फरमाज मुहद्दिसी ने लिखा है, अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र भी लिखा है, वो भी इस गार में जाया करते थे। जो हमारे हज़रत शेख यूनुस साहब ने किताब तौहीद में इसको नकल फरमाया, फरमा इसी तरीके से उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने तक ख्वाब शुरू हुए, अच्छे अच्छे ख्वाब, रुकिया। आप लोगों को क्या बताऊं ख्वाब क्या क्या होता है, फलासफा कहते हैं ख्वाब क्या है, अतिब्बा क्या कहते हैं ख्वाब क्या है, मुफस्सिरीन क्या कहते हैं ख्वाब क्या है, रुए सालिहा की कितनी किस्में हैं, ख्वाब की कितनी किस्में हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन 6 महीने जो भी ख्वाब देखते सुबह में सच्चा होता था, रुए सालिहा होता था, बिल्कुल सच्चा होता था, सुबह बिल्कुल वही नजर आता था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखते थे। फिर उसके बाद मैं मुख्तसर कर रहा हूं इस रिवायत को, अचानक आ गए फरिश्ता। अब क्या किया, आने के बाद फगतनी ऐसे दबाया, बाज़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं गला दबाया, क्या दबाया, गला दबाया, और बाज़ क्या कह रहे हैं इस तरीके से सीने को दबाया, हत्ता बलगनी मिन्नी अलजहद, ऐसा लगता था मेरी जान निकल जाएगी, इस तरह दबाया। कितनी बार, एक बार इकरा मान बेकार है, दूसरी बार दबाया, फरिश्ता जिसके 600 पर हो, जिब्रील हो, सैयदुल मलाइका हो, वो दबाए इंसान को, कैसा दबाया होगा। दूसरी बार इकरा मान बेकार, तीसरी बार, सवाल होता है 3 बार क्यों, अल्लाह चाहता था पहली बार में कुरान शुरू करवा देते, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, मुहद्दिसीन फरमाते हैं बहुत सारे निकाल, एक नुक्ता ये बयान फरमाया, 3 बार दबाने में इशारा इस बात की तरफ है, ये ईमान जो लाना है वो ईमान 3 चीजों का नाम है, कौल फैल और नियत, जबान से अमल आमाल सालेहा और नियत, ये 3 चीज ईमान होगी। बाज़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं यहां इशारा है, जो किताब तुम्हें अभी दी जा रही है उसमें मेन 3 हुक्म होंगे, अकाइद होंगे, हुक्म होगा अल्लाह का, अहकाम होंगे, और अखबार बिल गैब होंगे, गैब की खबरें होगी। बाज़ कहते इशारा इस बात में किया, तुम पर 3 मुसीबतें आएगी, तुम शोबे वितालिब में जाओगे, तुम्हारे लिए कत्ल का प्लानिंग किया जाएगा, और तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने अहबुल अवतन वतन को छोड़ना पड़ेगा, अपना प्यारा वतन छोड़ेंगे तो फिर तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी बरजक भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। और उसके बाद और भी बहुत सारे निकात हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं खातिमुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की शरह में, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर बुखारी में क्या बात नकल फरमाई, फरमाया अल्लाह अपने नबी को 4 सिफात देना चाहता था। कितनी बार? 4 सिफात, सिफात इनकासी और सिफात इल्काई और सिफा। अब तुम क्या समझोगे ये क्या चीज, किस बला का नाम है ये, इन 81 को चलो समझा दूं कि अगर कोई नूर उतर जाता है तो आपको लगता है बहुत नूर है, क्या बात है नूर। और इल्काई के कोई शेख है, आज कोई बड़ा शेख आ जाए तो मस्जिद में नूर ही नूर नजर आता है। उसके बाद ये तो इन 81 है, अकस हो गया उनके नूर का सबके सामने, फिर इल्काई, फिर उसके बाद शेख अपनी मोमबत्ती से सामने वाले मुरीद की मोमबत्ती को जला देता है, तुम भी जला। ये इल्काई है, इसको क्या कहते हैं, इल्काई है। और उसके बाद इस्लाही है, सोहबत निस्बते इस्लाह पैदा होती है, और इस्लाही में क्या होता है, आदमी फिर चमक जाता है। क्या जाता है? चमक, अपनी जात के हिसाब, दूसरों के लिए नहीं, खुद चमक जाता है शेख की खिदमत में रहकर। फिर उसके बाद निस्बत इत्तेहादी होती है, ऐसी होती है कि अब ये लोगों को चमकाने वाला हो जाता है। लेकिन उसमें एक बार नहीं, शेख एक बार करेगा तो ख्वाजा बाकी बिल्ला वाला मसला हो जाएगा, उन्नान भाई वाला मसला हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता शेख उसकी तरबियत, अब ये लोगों की तरबियत शेख की गैर मौजूदगी में इंतकाल के बाद अब ये लोगों की तरबियत करेगा। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से ये चार सिफात, जिब्राइल आए नूर से भर गई, कौन सी चीज, गार हिरा नूर से भर गई, उसके बाद तीन मरतबा दबाया, पहली मरतबा दबाकर क्या निस्बत इल्काई अटा हो गई, लाइट जल गई, फिर दूसरी मर्तबा दबाया निस्बत इस्लाही पैदा हो गई कि खुद चमके, अब उसके बाद तीसरी बार दबाया उनके कुरान को लोगों तक पहुंचाने वाला और लोग कुरान पढ़ने वाले बन गए। इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, खलक कर इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, ये बात अल्लाह कर गए। और क्या हुआ फिर, वो पूरी हदीस में बयान कर लो तो आसान हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर सुनाऊंगा कि आगे क्या हुआ, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, फिर वर्का भी नौफल के पास क्यों ले गए, वर्का कौन था, उसके पास क्यों ले गए और किसी के पास क्यों नहीं लेगा ले जाया गया, बहुत सारी तफसीर है लंबी इंशाल्लाह, फिर कभी यहां से बयान करेंगे। आयत नंबर होगी 32 से, قال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جمله واحده, कुरान को एक मरतबा क्यों नाजिल नहीं किया, उसकी बहुत सारी हिकमत है इंशाल्लाह, इसको बयान करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमा, या अरहम राहिमीन, या ذا الجلال والاكرام, या हन्नान या मन्नान, या दयान या सुल्तान, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل القرآن حجة علينا, اللهم لا تجعل القرآن حجة علينا, واجعله حجة لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا أكرم الأكرمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله يا أرحم الراحمين. ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری خدمت میں پیش کریں اور معافی مانگے, بس سے اللہ تیرے کلام کی محبت میں بیٹھے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اللہ تیرا تو جتنا بڑا ہے تیرا کلام بھی اتنا بڑا ہے. القرآن و کلام اللہ بخرج منہ, اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما دے, ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, ہمارے اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کی اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے اقارب و رشتہ داروں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے محبین, اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے اور جہاں کہیں ہمارے دوست احباب ہیں سب کی مغفرت فرما, جو ہم سے منسلک ہے بیت ہے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ جہاں جہاں لوگ قرآن سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سب کی مغفرت فرما, اللہ زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, امت کی حال پر رحم فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں مشکلوں کو دور فرما, اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما, قاری قرآن میں سے بنا, عاشق قرآن میں سے بنا, دائی قرآن میں سے بنا, حامل قرآن میں سے بنا, عالم قرآن میں سے بنا, عامل قرآن میں سے بنا, مخلص بنا, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, قرآن کو سینے سے لگانے والے میں سے بنا, قرآن سے محبت رکھنے والوں میں سے بنا, اللہ اپنے نبی کی سنت پر چلنے والوں میں سے بنا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس سے راضی ہو جائے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمارے گھریلو ہر پریشانیوں کو دور فرما, آنے والے فتنوں سے ہماری ہماری آل اولاد کی تا قیامت حفاظت فرما, اے اللہ کفر سے شرک سے پھسلنے سے بگڑنے سے ہماری ہماری آل اولاد کی تا قیامت حفاظت فرما, اللہ اپنے فضل و کرم سے ان آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.